का मन को आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमें भौतिक अस्तित्व में होते हैं, वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट कथन है कि भगवान का
ठीक से पढ़िए, समझ नहीं आया क्या गलत से पढ़िए एज सच हमें जहाँ से।
जैसे हमें भौतिक अस्तित्व में होते हैं
उससे पहले उससे वाक्य पूरा आधा वाक्य पढ़ा,
अतः उन्हें पृथक शरीर अथवा मन की आवश्यकता नहीं होती।
हाँ उन्हें उन्हें मतलब पृथक शरीर और जैसे हम लोगों को इस भौतिक अस्तित्व में होती है।
जैसे हमें भौतिक अस्तित्व में होती है वैदिक ग्रंथों में
सॉरी मैंने इसका क्या है आध्यात्मिक अस्तित्व में हमें मन नहीं चाहिए शरीर नहीं चाहिए। यहाँ लिख रहा है कि हमें भौतिक अस्तित्व में जरूरी होती है मन और शरीर, आध्यात्मिक में नहीं। मतलब आध्यात्मिक शरीर में हम सब गायब हो जाते हैं, मन रहता है ना शरीर वाली शरीर रहता है सब एक ही। भगवान ये हमारी बात कर रहे हैं, हम लोग जो पहुंचेंगे आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान को ठीक है, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं। जब हम लोग पहुंचेंगे आध्यात्मिक अवस्था में तब क्या होगा? भौतिक अवस्था में हमें शरीर चाहिए मन चाहिए सब चाहिए ना, तो आध्यात्मिक अवस्था में चाहिए कि नहीं चाहिए?
लेकिन भौतिक अस्तित्व खत्म हो जाते हैं ना, भौतिक अस्तित्व खत्म हो जाता है।
भौतिक अस्तित्व की बात यहाँ है कि उन्हें एक अलग शरीर और मन की आवश्यकता नहीं है जैसे हमें भौतिक अस्तित्व में होती है। इसको कौन समझाए इस वाक्य केवल समझाइए, बस हम कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे, इस एक वाक्य को समझाइए। माइक थोड़ा है नहीं दूसरा उनको दीजिए।
वहाँ पर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, वहाँ पे मन बुद्धि की जरूरत नहीं होती,
मन की जरूरत नहीं बुद्धि की जरूरत नहीं शरीर की जरूरत नहीं, रोबोट्स बन जाते हैं कुछ नहीं चाहिए।
वहाँ
पे तो स्वरूप में मन बुद्धि होता है या नहीं, शरीर होता है या नहीं, वो प्रश्न है होता है अलग नहीं होता है। बहुत अच्छा ध्यान से पढ़ने चाहिए प्रभुपाद के वाक्य।
जैसे हम यहाँ पे कोई आनंद अनुभव करना है तो हम मन के थ्रू करते हैं, हमारे पास आत्मा का कोई अपना मन यहाँ पे नहीं है, लेकिन वहाँ पे आत्मा खुद ही आनंद से बनी है तो उसको अलग से किसी चीज की जरूरत नहीं है।
तो मन बुद्धि होती है या नहीं? मान
सारी
बुद्धि हो जाती है
आत्मा खुद ही ज्ञान से परिपूर्ण है।
Yes, हमें वहाँ भी शरीर मिलता है, ऐसा नहीं है कि हमें शरीर नहीं मिलता, लेकिन वहाँ आत्मा ही शरीर हो जाती है और उस शरीर में सारी इंद्रियाँ होती हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि आत्मा के अंदर कोई इंद्रिय नहीं, आँख नहीं, कान नहीं है, आत्मा ही शरीर है। इसीलिए यानी कि अलग से शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती, अलग से मन की आवश्यकता नहीं, अलग से बुद्धि की, क्योंकि आत्मा ही शरीर है। तो मन भी है बुद्धि भी है सब है, लेकिन भौतिक नहीं, इंद्रिया भी है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वहां कोई देखेंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से, सुनेंगे कहाँ से। गोलोक में भी भगवान के साथ सब लीला करते तो सुनने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, आंखें चाहिए, हाथ चाहिए, शरीर है लेकिन अलग से। तो जब हम प्रभुपाद के पढ़ते हैं तात्पर्य है तो बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए कि एक शब्द महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए हम आप लोगों को बार बार पढ़ाते हैं कि नहीं इसको फिर से पढ़िए, क्योंकि कभी कभी आप लोग बस पढ़ते जाते हैं कोई ध्यान नहीं देता, ना पढ़ने वाला ध्यान देता है ना सुनने वाला ध्यान देता है, वो टक 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 हो गया। तो इसको ध्यान से पढ़िए हर एक वाक्य, और आपको अगर कुछ नहीं समझ में आए तो बीच में पूछिए, ये नहीं कि बस हो गया खत्म ईश्वर। तो यहाँ पर इसको ये समझना चाहिए कि हमें वहाँ आध्यात्मिक अस्तित्व में भी शरीर होता है अलग से नहीं, क्योंकि आत्मा ही शरीर है और बुद्धि भी है वहाँ, बुद्धि इस्तेमाल करते हैं ना जब मित्र खेलते हैं कृष्ण के साथ, अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते हैं, बुद्धि भी है, सब है, लेकिन वो सब आध्यात्मिक है, इंद्रियां आध्यात्मिक है पूर्ण रूप से। तो हमारी इंद्रियां अभी भी हैं, अभी हमारी इंद्रिय कहाँ चली गई आध्यात्मिक इंद्रियां? अभी घर गई है। तो जो देखने की प्रक्रिया है वो ये आंख कर रही है,
आत्मा की इंद्रिया अभी भी है, अगर शरीर जब मर जाता तो देख नहीं पता आंख होते हुए भी,
राइट? तो इंद्रिया काम कर रही है,
इंस्ट्रूमेंट है बॉडी,
तो ये जो आंखें हैं ये आंख से हम नहीं देख सकते हैं। अगर ये आंख से देख सकते तो फिर आत्मा के बाद कितने दिखाई देता है, सुनाई देता, लेकिन आत्मा चली गई तो इंद्रियां चली गई, ये तो केवल कवरिंग है बाहर के, क्या बोलते हैं, आत्मा के स्पेक्स है। अच्छा ओके ठीक है, वेरी गुड, आपके स्पेक्स में नहीं थे आपको, अच्छा है, हम कहते हैं इसका कोई उदाहरण आया नहीं है यहाँ, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो जाती है, और आध्यात्मिक बुद्धि का अर्थ है बुद्धि का उतना उपयोग करना जितना कृष्ण की सेवा के लिए आवश्यक है। तो अगर किसी को अपनी बुद्धि 10% ही युक्त करनी हो 10% करेंगे, किसी को 100 करनी है तो 100 करेंगे। यहाँ पर हमारी बुद्धि कहाँ पूरा उपयोग नहीं कर पाते, हमारी बुद्धि को कोई 10% करता है, कोई 5% वहाँ पूरा कर सकते हैं। तो जितना आवश्यक है कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ कोई सीमा नहीं कि इसके परे इसको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, जितना कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा के लिए आवश्यक है वहाँ सब होता है। और आप लोग जब वहाँ पहुँचेंगे तो सब जान जाएंगे, अभी से कुछ इतना चिंता करें। हाँ जी, वही उनका प्रश्न था, प्रभु जी का प्रश्न वही था कि वहाँ भी कम बुद्धि ज्यादा बुद्धि वाले होते हैं।
आपने कहा कि वो इस्तेमाल करते हैं जितने जरूरत हो उसके इस्तेमाल करें, लेकिन जो वैसे जो
बुद्धि पूर्णता है, हर एक के पास बुद्धि पूर्णता है, उसमें कोई कमी नहीं है वहाँ, लेकिन वही बताया कि जितना आवश्यक है उतना उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रश्न की यस आगे बढ़िए।
वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट कथन है कि भगवान का दिव्य शरीर हमारे शरीर से सर्वथा भिन्न होता है, इससे उन्हें कभी 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 निराकार कहा जाता है।
तो भगवान को जब कहा जाता है अदेह अकाय निराकार, मतलब ये नहीं कि उनके शरीर नहीं है, उनका शरीर हमारी तरह है। ठीक है, जैसे भगवद गीता में भगवान ने वर्णन किया है, अगर हम लोग भगवदगीता को देखें चौथे अध्याय को, तो चौथे अध्याय में पांचवें और छठे श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं, भगवान अपने दिव्यता का वर्णन करते हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न किया ना कि आपको कैसे पता, या बोल रहे हो कि भगवान को आपने दिया, आप तो मेरे साथ हुआ भी जन्म हुआ है, मेरे कैसे दे दिया। तो भगवान ने क्या कहा, बहुनी ने व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुन, ये अर्जुन मेरे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मुझे याद रहता है तुम्हें, तो क्यों भगवान को याद रहता है, क्योंकि एक ही शरीर है, भगवान का शरीर नहीं बदलता है, दिव्य है, हमारे शरीर बदल गए, भूल गए पिछले जन्म में क्या था, किसी को याद है आप में से पिछला जन्म, आप कहीं कहीं थे, आपको याद आया एक दिन आपने देखा, हाँ तो हम लोग भूल जाते हैं कि भगवान को सारे बहुनी में है। और उसके बाद क्या कहते भगवान छठे श्लोक में, अजोपी सन्न व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन्न, भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूं, अजोपी सन्न व्यय आत्मा, तो इसलिए अपने दिव्यता का, सॉरी अपनी दिव्यता का भगवान वर्णन कर रहे हैं, खुद ही उन्होंने वर्णन किया कि क्या उनकी स्थिति। तो इसलिए भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, हमारी तरह भौतिक नहीं है, तो इसीलिए उनको कभी कभी निर्गुण निराकार कहा जाता है। निर्गुण मतलब उनमें भौतिक गुणों का लेश मात्र भी नहीं, इसलिए उनको निर्गुण कहा जाता है। ऐसा नहीं कि उनके अंदर कोई गुण नहीं है, निर्गुण मतलब कोई गुण नहीं, नहीं निर्गुण मतलब भौतिक गुणों का लेश मात्र भी उनमें, भौतिक गुण तीन गुण, प्रकृति के तीन गुण, और उनसे उत्पन्न होने वाली सारी चीजें, हमारे अंदर जितनी भी चीजें हैं भौतिक गुण किससे उत्पन्न हुए हैं, इन तीन गुणों से, तीन गुणों का मिश्रण है, हमारी इच्छाएं, हमारा द्वेष, हमारा काम क्रोध, ये सब किसका है, तीन गुणों का प्रभाव। तो भगवान गुणातीत है, इसीलिए उन्हें निर्गुण कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े।
इसका अर्थ यह है कि उनका स्वरूप हमारे समान नहीं होता है, वे ऐसे रूप के विहीन है जिसकी हम कल्पना कर सके। ब्रह्म संहिता 5.35 में आगे यह भी कहा गया है कि भगवान अपने शरीर के किसी भी अंग को दूसरी इंद्रियों का काम भी कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अपने हाथों से चल सकते हैं, अपने पांवों से वस्तुएं पकड़ सकते हैं, अपने हाथों तथा पैरों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से खा सकते हैं इत्यादि।
इतना अच्छा होगा ना अगर हम लोग भी ऐसे करने लगे, राइट। हाथों से खाने की जगह हम लोग पांव से खा रहे हैं, आंखों से खा रहे हैं। जैसे आंखों से खाना सबसे अच्छा है, डाइजेशन अच्छा रहेगा सर, फिर आंखों से खा रहे हैं। आप लोग प्रयास कीजिए, प्रारंभ कीजिए, भोजन सामने आए बस केवल उसको देखिए, आंखों से खा रहे हैं। प्रयास कर सकते हो, कितने भी कर सकते हो, आंखों से खाए आंखें भी रह गई, दो तीन दिन बाद दिखाई दे देगा।
श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया है कि यदि भी भगवान को हमारे जैसे हाथ पांव नहीं होते किंतु उनके भिन्न प्रकार के हाथ एवं पैर होते हैं, जिसके वे हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु ग्रहण कर सकते हैं और किसी की भी अपेक्षा अधिक तेज दौड़ सकते हैं। इस आठवें मंत्र में इन सारे तथ्यों के शुक्रम सर्वशक्तिमान जैसे शब्द के उपयोग की पुष्टि होती है।
तो यहाँ शुक्रम शब्द को प्रभुपाद समझा रहे हैं, शुक्रम मतलब सर्वशक्तिमान, कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते और हमें प्रयास भी नहीं करना चाहिए। ये सब सुनकर हम प्रयास करेंगे, हम भी ट्राई करते हैं हाथों पर चलने का। कुछ लोग चलते हैं, योगा करके हाथों पर चलते हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए। और आंखों से खाने का तो बिल्कुल प्रयास मत कीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। श्रुति मंत्र मतलब जब वेदों को भाग किया जाता है तो वेदों में श्रुति स्मृति और न्याय तीन विभाग होते हैं, जिसको प्रस्थान त्रय कहते हैं, श्रुति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान। तो श्रुति में वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं। हम लोगों ने पहले में सारी चर्चा की है, अब आप लोग एंड में ऐसे पूछेंगे तो हमें लगेगा कि हमने कुछ पढ़ाया ही नहीं, फिर से वापस जाना पड़ेगा। तो श्रुति मतलब जो सुना जाता है, उपनिषद वेद इत्यादि जिसमें संहिताएं आती हैं। आगे बढ़े।
भगवान का पूज्य स्वरूप जिसकी स्थापना ऐसे प्रमाणिक आचार्यों द्वारा मंदिरों में की जाती है, जिन्होंने सातवें मंत्र के अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया है, भगवान के मूल स्वरूप से भिन्न है। भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण अपने विस्तार असंख्य रूपों में यथा बलदेव राम ऋषि वाला आदि में करते हैं। ये सारे स्वरूप एक ही भगवान है। इसी तरह
तो यहाँ पर भगवान के विस्तारों का वर्णन हुआ है कि भगवान अपना विस्तार अलग अलग रूपों में करते हैं, अलग अलग, तो उनके विस्तारों की थोड़ी सी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो भगवान कृष्ण के विषय में कहा गया है भागवतम में कि वे मूल है। ते चांश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो यहाँ पर आप देखिए जितने भी अवतार आते हैं, जो भी अलग अलग श्रेणियां हैं अवतारों की, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वो सब कृष्ण से आते हैं, कृष्ण मूल हैं। तो कृष्ण के जो विस्तार हैं उनकी चर्चा, ये फॉन्ट यहाँ पर इसमें बलराम फॉन्ट शायद नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक मत करिएगा नहीं तो खराब लगेगा, भूल गए इसमें बलराम फॉन्ट डालने के। तो कृष्ण के जो विस्तार हैं उनका यहाँ पर वर्णन है कि श्री कृष्ण ये स्वयं रूप कहलाते हैं। प्रभुपाद इसको पहले स्कंध के दूसरे अध्याय के 22वें तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये स्वयं रूप कहलाते हैं। तो स्वयं रूप क्या है? वो रूप जो गोलोक में है, जहाँ भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, गायों के साथ आनंद ले रहे हैं, गोलोक में रहते हैं, वो स्वयं रूप कहलाते हैं। तो फिर ये जो स्वयं प्रकाश है या स्वयं रूप है, फिर ये दो भागों में बटते हैं। एक कहा जाता है प्राभव प्रकाश और दूसरा वैभव प्रकाश। ये आपको चैतन्य टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में भी मिल जाएंगे विस्तार से। तो फिर प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश, ये दो में होते हैं। प्रभाव और वैभव में अंतर क्या है? प्रभाव प्रकाश जो भगवान के हैं, ये शब्दों से आप भ्रमित मत होइएगा, बड़ी सरल है समझने के लिए। एक स्वयं रूप है भगवान का और एक प्रभाव होता है। प्रभाव मतलब वही भगवान, वही रूप, वही सारा कुछ सेम, कोई अंतर नहीं, वही शक्ति है, वही उनके फीचर्स हैं, सब वही। जैसे उदाहरण रासलीला, रासलीला में भगवान ने अपने आप को विस्तार कर लिया और सारे कृष्ण एक समान थे, कोई भेद नहीं था, तो वो प्रभाव प्रकाश कहलाता। और फिर वैभव प्रकाश, वैभव प्रकाश वही भगवान लेकिन थोड़े से उनमें अंतर हो जाता है, जैसे रंग का अंतर, लेकिन वही है भगवान, वही है शक्ति, वही है, लेकिन जैसे थोड़ा सा पीछे से रंग का अंतर हो जाएगा। जैसे बलराम जी, तो बलराम जी कौन है, भगवान है या नहीं? वही भगवान है, केवल अंतर है कि बलराम जी काले हैं और कृष्ण गोरे हैं। हमारे ज्ञान इतना नहीं है। बलराम जी में भी 64 गुण नहीं होते हैं, थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। बलराम जी बांसुरी बजाते नहीं है, बस इतना ही है ना। कृष्ण और बलराम में थोड़ा अंतर है कि बलराम सेवा करने वाले भगवान है, कृष्ण सेव्य भगवान है, बलराम जी सेवक भगवान है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर प्रीतिय देह श्री बलराम, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, आद्य काय व्यूह कृष्ण नीलर सहाय। कि एक ही भगवान है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सारे अवतार कृष्ण से आते हैं इसलिए स्वयं भगवान। ताहर द्वितीय देह, उनका ही दूसरा रूप, उनका दूसरा ही रूप है श्री बलराम। एक ही स्वरूप दो है भिन्न मात्र काया, दोनों एक ही है केवल रंग का अंतर है। आद्य काया भी उन कृष्ण लीला में सहायक, क्यों ऐसा रूप लिया है? कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए। तो बलराम जी कृष्ण लीला में सहायता करने के लिए रूप देते, तो उसको वैभव प्रकाश कहते हैं, थोड़ा सा अंतर हो गया। और फिर तदैकात्म रूप आते हैं उन वैभव प्रकाश से, बलराम जी से आगे चलकर। तो तदेकात्म रूप आता है जिसमें दो प्रकार के अविस्तार होते हैं भगवान के, एक विलास कहते हैं और दूसरा स्वांश कहते हैं। तो स्वांश में अवतार आते हैं, अलग अलग अवतार, और विलास में चतुर्व्यूह इत्यादि, भगवान के जो वैकुंठ में चतुर्भुज रूप है उनको विलास कहते हैं, विलास रूप है जो भगवान के चतुर्भुज रूप है। कितने चतुर्भुज रूप है भगवान के आध्यात्मिक जगत में? हर लोक में, वहां पर वैकुंठ, कितने लोक हैं वैकुंठ लोक? कोई सीमा नहीं, और हरेक लोक में भगवान का एक चतुर्भुज रूप है, विष्णु रूप। तो ये, और फिर वो चतुर्व्यूह क्या है? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, विचार, तो इसको चतुर्व्यूह कहते हैं। तो ये विलास कहलाते हैं, और उनसे फिर स्वांश आते हैं। स्वांश, ये अगेन वो शब्द ठीक नहीं आए फाटके का, स्वांश में कौन से? पहले पुरुष अवतार, पुरुष अवतार। वैकुंठ लोक भी अनगिनत है, यस, वैकुंठ लोक ही अनगिनत है, ब्रह्मांड भी अनगिनत है, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड भौतिक जगत है ये वैकुंठ का ही हिस्सा है, एकांशेन स्थितो जगत, पूरा जगत आध्यात्मिक है, उसके एक कोने में ये भौतिक जगत है। तो वैकुंठ लोक तो बहुत ज्यादा, ये जो भौतिक जगत है ये तो केवल 20-25% और फिर एक तिहाई, क्या कहते हैं, तीन भाग, तीन चौथाई, सॉरी तीन चौथाई, तीन भाग तो ऊपर है।
हर भौतिक दुनिया का, हर ब्रह्मांड का अलग भौतिक,
एक एक ही वैकुंठ, मतलब एक जगत, वैकुंठ यानी एक लोक नहीं है, आध्यात्मिक जगत को वैकुंठ कहते हैं, उसमें असंख्य लोक है उसमें, और उसी का एक हिस्सा है ये भौतिक जगत। तो हर एक भौतिक ब्रह्मांड का एक वैकुंठ नहीं है, हर एक वैकुंठ बहुत सारे वैकुंठ, बहुत सारे लोक मिलकर एक वैकुंठ बनता है, जैसे बहुत सारे ब्रह्मांड बनकर ये भौतिक जगत बनता है, वैसे बहुत सारे बहुत सारे लोग बनकर वैकुंठ लोक बनता है। ठीक है, समझ में नहीं आया। एक भौतिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है, राइट। भौतिक जगत 25% 25% है, आध्यात्मिक जगत 75% है, टोटल मिलकर 100% आता है। ठीक है, तो जितना हम यहाँ भौतिक जगत में देखते हैं, तो भौतिक जगत किसको कहते हैं, ये सारे 14 भुवन जो एक ब्रह्मांड होता है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड जो महाविष्णु के शरीर से निकलते हैं, वो सारा मिलकर भौतिक जगत कहलाता है, और ये केवल 25% है। इसके परे आध्यात्मिक जगत है जो 75% है, और उसमें ऐसे कई लोक हैं, एक लोक से नहीं बना। जैसे भारत जब कहते हैं तो भारत में केवल एक शहर नहीं है सूरत, कितने सारे शहर हैं, बंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, सब मिलकर भारत बनता है। जब कहा जाता है कि सूरत कहाँ है, भारत में, कलकत्ता कहाँ है, भारत में, मद्रास कहाँ है, भारत में, तो इसी तरह सारे वैकुंठ लोग, नरसिंह देव का लोक कहाँ है, वैकुंठ, ब्रह्मदेव का कहाँ है, वैकुंठ। तो जितने भी लोग हैं वो मिलकर एक आध्यात्मिक जगत बनता है। ठीक है, नहीं वैकुंठ से अलग कुछ नहीं है, वैकुंठ लोकों में प्रमुख लोग, भारत की राजधानी कौन सी है, क्या भारत से अलग है, क्या कहते हैं कलकत्ता मद्रास सब भारत में, लेकिन दिल्ली भारत में ही है लेकिन प्रमुख है। सारे जो प्रधान लोग हैं भारत के, पूरे भारत के, वो कहाँ बैठते हैं, दिल्ली में। तो इसी तरह जो सारे वैकुंठ लोगों के प्रमुख स्वामी हैं वो कहाँ बैठते हैं, बोलो, तो बोलो सारे लोगों का राजधानी है आपके, उसको समझ। नहीं सरल क्यों नहीं समझ रहे आप लोग, सरल है भारत है और देश है, अलग अलग राज्य है, सरल समझ लीजिए कि हर उसको क्यों और घुमाने की जरूरत है। सरल सिंपल चीज, भारत एक देश है उसमें कई सारे शहर है, तो वैकुंठ एक प्रदेश है उसमें कई सारे लोग हैं। सूरत में कोई और वास करते हैं और दिल्ली में कोई और वास करते हैं, लेकिन जो दिल्ली में वास करते हैं वो सारे भारत को कंट्रोल करते हैं। सूरत में गुजरात के चीफ मिनिस्टर सारे भारत को कंट्रोल नहीं करते, सही है। जो कहना चाह रहे हैं उसको समझ लीजिए, समझ गए तो पूछिए। हमारा ये कहना है कि भगवान ये गोलोक में बैठते हैं और उस सारे ब्रह्मांड सारे आध्यात्मिक जगत को कंट्रोल करते हैं, जैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठते हैं वो सारे भारत को कंट्रोल करते हैं, वो गुजरात को भी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो गुजरात में बैठने वाले हैं वो भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। गुजरात के मुख्यमंत्री का कोई अधिकार तमिलनाडु में नहीं है, क्या तमिलनाडु जाकर वहां कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली के प्रधानमंत्री हैं वो तमिलनाडु में भी कर सकते हैं, गुजरात में भी कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी कर सकते हैं, जब चाहे जहां चाहे कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने स्वतंत्रता दे रखी है, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को अधिकार है सब करने का, लेकिन अगर कुछ करना है तो उनको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मुख्यमंत्री को रोका जा सकता है। इसी तरह हर एक के अपने प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट में उनका पूरा अधिकार है, लेकिन उनके ऊपर कृष्ण का अधिकार है। ठीक है, कोई और बात व्यवहार है।
आध्यात्मिक जगत को
ही वैकुंठ लोग हैं, हम अलग अलग लोग कहलाते हैं, अलग अलग, जैसे गोलोक एक लोक, तो अलग अलग नाम अलग अलग लोग कहलाते हैं। हाँ जी, जैसे नाम अलग अलग हैं उनके, अभी सारे नामों की सूची नहीं है, लेकिन उनके नाम हो सकते हैं। जैसे अयोध्या एक लोक है, भगवान राम का धाम, उसको अयोध्या कहते हैं वहां पर, तो वो एक लोक है। और ऐसे जिनके भी अपने अपने धाम है उनके नाम है, लेकिन वो वैकुंठ भी कहलाते हैं, तो उनके नाम भी हैं और वैकुंठ भी कहलाते हैं। जैसे अयोध्या भी है और अयोध्या को आप वैकुंठ भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि अयोध्या को आप वैकुंठ नहीं कह सकते। जैसे आप सूरत को भारत कह सकते हो या नहीं, अगर कोई कहे कि आप कहां पर हो तो आप कहो मैं भारत में हूं इस समय, गलत कहेगा। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि मैं सूरत में, वो भी गलत है, दोनों सही है। तो इसी तरह अगर कोई कहे कि अयोध्या में हूं मैं, वो भी सही है, और दूसरा कोई कहे कि मैं वैकुंठ में हूँ, वो भी सही है।
तो अयोध्या और
ये सब जगह चतुर्भुज रूप ज्यादातर, ठीक है। और कोई प्रश्न, कोई संशय, मतलब जी कुछ संशय है? आगे बढ़े। ओके, सो पुरुष अवतार, पुरुष अवतार कौन से होते हैं? शिव दक्षाय विष्णु, गर्भ दक्षाय विष्णु और कारण दक्षाय विष्णु। इनके समझाने की जरूरत नहीं ना आपको, नहीं ये गलत आ रहा है। पुरुष अवतार ने कहा उसको, इसलिए मैंने कहा कॉपी मत कीजिए, इसको क्लिक मत कीजिए, ये पुरुष अवतार फॉन्ट्स का अवतार। तो पुरुष अवतार में महाविष्णु, गर्भ दक्षाय विष्णु, शिव दक्षाय। दूसरे होते हैं लीला अवतार, लीला अवतार में कौन आते हैं? बहुत अच्छा, बराह इत्यादि। फिर तीसरे हैं गुण अवतार, गुण अवतार में जोर से कहिए, व्यासदेव जी और ब्रह्मा जी, सही है? नहीं वैसे क्यों? गुण अवतार मतलब जो तीन गुणों के अवतार है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण के कौन है? विष्णु। रजोगुण के ब्रह्मा और तमोगुण के इसलिए तीन गुण अवतार। फिर उसके बाद आते हैं मन्वंतर अवतार, मन्वंतर अवतार। आप ये क्लिक करेंगे तो थोड़ा आगे कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, इसके लिए इसको क्लिक मत कीजिए, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। पूर्ण अवतार कह देंगे पुरुष की जगह, ठीक से आने रहना। मन्वंतर अवतार, मन्वंतर अवतार कौन से होते हैं? थोड़ा थोड़ा क्यों बोले, क्लियर ही बोले हैं, जिसको पता है वो ऐसे ऐसे इधर उधर बोल रहे हैं कि आपने सुनाई थी आपने नहीं सुनाई है। हाँ तो पर कीजिए जिसको पता है मन्वंतर अवतार और स्पष्ट संज्ञा है। और इस मन्वंतर के कौन अवतार है? यस पंडित जी, वेरी गुड। इस मन्वंतर के मामा देव अवतार है और भगवान अवतार है और हर मन्वंतर का है। कितने समय तक रहते हैं वो? 14। हाँ तो कितने समय तक मन्वंतर अवतार रहते हैं? एक मन के समय के, उसको मन्वंतर कहते हैं। तो 71 करीब 71 क्षत्रिय, ठीक है? आप लोग सब एक्सपर्ट हो। युग अवतार छठे जो होते हैं, इसमें एक रह गया ना, शक्तावेश। तो युग अवतार, युग अवतार कौन होते हैं? नहीं होते कौन है, परिभाषा युग अवतार की अलग अलग। बहुत अच्छा, अलग अलग युग में आते हैं और अवतार लेते हैं, किस लिए? युग धर्म की स्थापना के, ठीक है? तो उसको युग अवतार कहते हैं। हाँ जी,
जो गुण अवतार है ब्रह्मा जी,
सभी लोग अपनी कृष्ण की तरफ पूजा करते हैं, मंदिर में कौन पे जैसे कर आप लोग को पूजा होता है, तो ऐसे ब्रह्मा जी शिव जी की गुण अवतार है, उनको ऐसे कृष्ण क्यों पूजा नहीं करते,
उनको
ऐसे क्यों पूजा नहीं करते?
अरे पूजा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो गुण अवतार है, फिर भी पूजा क्यों नहीं? गुण अवतार होने का अर्थ ये नहीं है कि वो भक्त भगवान है। ब्रह्मा जी जीव हो सकते, ब्रह्मा जी जीव हो सकते हैं, और किसी जीव को भगवान विशेष शक्ति प्रदान करके उनको गुण अवतार बना देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो तीनों भगवान ही गुण के अवतार जो है, जैसे शिव जी इत्यादि, तो जरूरी नहीं है कि वो गुण अवतार वो भगवान, क्योंकि शिव जी हालांकि भगवान के विस्तार हैं, लेकिन तमोगुण का स्पर्श करते हैं इस जगत में सेवा के रूप में, उनको तमोगुण की अधिष्ठाता है, और क्योंकि वो तमोगुण का स्पर्श करते हैं इसीलिए वो भगवान पूर्ण नहीं है, क्योंकि भगवान गुणातीत है, गुणों से परे है। तो ये हमें जानना चाहिए, भगवान कभी गुणों को स्पर्श नहीं करते, तो वो गुणों से परे रहते हैं, तो इसीलिए देवी देवताओं में आते हैं और इनकी हम पूजा अपने मंदिरों में भगवान समझकर नहीं करते, इनको आदर सम्मान निश्चित देना चाहिए। आगे देवी देवताओं का वर्णन आएगा, उसमें हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। विष्णु जी भगवान हैं, क्योंकि हालांकि वो सत्व गुण के अधिष्ठाता हैं, लेकिन फिर भी गुणों से परे रहते हैं। तो भगवान विष्णु को जैसे उनके जो 60 गुण हैं, तो वो गुणों से परे रहते हैं, स्पर्श नहीं करते, तो इसलिए भगवान विष्णु को हम भगवान मान लेते हैं, माना जाता है। लेकिन फिर भी हमारे लिए ये क्लियर है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कोई और संशय क्लियर हुआ प्रोजेक्ट? क्यों हम लोग ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा नहीं करते? शिव जी अभी हमने बताया कि गुणों का स्पर्श करने के सभी बताए, 5 गुण कह रहे हैं, अब लोग ध्यान नहीं रखते हैं लगता है, जो बोलते जाते हैं। हमने बताया कि क्योंकि शिव जी तमो गुण का स्पर्श करते हैं, इसीलिए गुणातीत नहीं है, इसलिए भगवान है, जस्ट अभी बताया। हाँ जी, और कोई प्रश्न इनके विषय में?
तो
अंसरकार का वर्णन भागवत में आता है, भागवत पढ़ी तो उसमें अंसरकार का वर्णन है कि उन्होंने ज्ञान दिया अंसरकार का। तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे प्रसिद्ध 10 अवतार हैं, दशावतार, लोग सोचते विष्णु के केवल 10 ही अवतार हैं, तो इसके उनके बारे में ज्यादा वर्णन है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर है, और हमारे लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम लोग सतयुग में नहीं है इस समय, तो इसलिए उनके युग अवतार का हमें वर्णन की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग युगों में आए, जैसे त्रेता में यज्ञ आए, वो युग अवतार हुए त्रेता के समय के, द्वापर में युग अवतार कौन है? युग अवतार त्रेता में, ओके, ग्रीन कलर बताते हैं,
और लाल में उसमें जो सेकंड अवतार है ना त्रेता, त्रेता में रेड
कोई वैसे नहीं, वो यज्ञ है। ठीक है, और कोई संशय? हम लोग अपने आप ही कंफ्यूज होते रहते हैं और अपने आप ही उसके आंसर ढूंढते रहते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं किसी दूसरे को आगे कंफ्यूज करने। अच्छा, हम खुद कंफ्यूज हैं, शक्ति आवेश अवतार, क्योंकि युग अवतार के बाद शक्ति आवेश, शक्ति आवेश अवतारों की 2 श्रेणी होती हैं, एक जो विष्णु तत्व होते हैं और दूसरे जो जीव तत्व होते हैं। जीव तत्वों में बहुत सारे शक्ति आवेश अवतार है, नाम बताइए कुछ शक्ति आवेश अवतारों का। कहाँ लिखा? नहीं, इस बात को क्लियर करने दीजिए, कहाँ लिखा है? जब तक शास्त्र प्रमाण नहीं हो बोलना नहीं चाहिए, कहीं शास्त्र प्रमाण है तो इसलिए ऐसे कह देना, कोई आपको पूछे ये तो आपकी भावना है, भावुक होकर भक्ति मत कीजिए। कहाँ लिखा है? वो मानते हैं। कहां पर स्पष्ट लिखा है कि प्रभुपाद हैं ये बताइए, कहीं स्पष्ट लिखा है? आपने मन से कह दिया क्योंकि आप उनके फॉलोअर हैं, हम समझ लीजिए हम उनके फॉलोअर नहीं, उदाहरण के लिए। अब आप हमको आगे कहते हैं, मतलब बताइए प्रूफ की आपके लिए नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते? सीसी किसने लिखी है? सीसी किसने ट्रांसलेट की है? और बताइए बताइए कहाँ प्रमाण है? प्रमाण बताइए, प्रमाण ये कनेक्शन मत दीजिए, ये कहा था वो कहा था, वही है वो प्रमाण बताइए। हाँ तो कौन से आचार्य की टीका में लिखा है कि प्रभुपाद यही है? ये कैसे पता? हम तो मानते हैं उनकी बात मान लेते हैं, हो सकता है आगे कोई और आने वाला हो। ओ किसने का नाम नहीं दिया गया? आपने कभी शास्त्र पढ़े नहीं? 25 शास्त्रों में नाम है महाप्रभु का, ऐसे कह ही नहीं सकते कि महाप्रभु का कहीं नाम नहीं है, स्पष्ट नाम है। भगवान ने गरुड़ पुराण में वर्णन है चैतन्य महाप्रभु का, और अन्य स्कंद पुराण में वर्णन है, इतने पुराणों में इतनी जगह पर उपनिषदों में वर्णन है महाप्रभु की वो भगवान है, ऐसे कैसे कह सकते कि कहीं वर्णन नहीं है? अहम पूर्ण भविष्यामि युग संध्या विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुतः। कि आगे आने वाले समय में मैं शचीसुत शची माता के पुत्र के रूप में मायापुर नवद्वीप में प्रकट होगा, और उनके नाम तक सारे दिए गए, श्री कृष्ण चैतन्य नामद्रिक मेरा ये नाम होगा, मैं संन्यास लूंगा, ये सारा वर्णन है महाप्रभु के बारे में। ऐसा कभी मत कहिएगा कि कहीं पर वर्णन नहीं, केवल हम लोग संक्षेप से समझते हैं। महाप्रभु का बहुत स्पष्ट वर्णन है, नाम के साथ, जगह के साथ, माता पिता के साथ, समय के साथ, सारा वर्णन। यस थोड़ा फाइट करने में अच्छा लगता है। क्या है?
हार्ड डिस्क ढूंढ निकाल के वापस
साइड पे रख दीजिए, टकराव लग
रहा है। और कोई तो हमें बताइए, वो कुछ ने कहा लिखा है? चौका है तो हमें ये कहना नहीं चाहिए, जब तक हमारे पास प्रमाण नहीं है हम केवल अपनी माने, हमारे मानने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, हम आपस में बोल सकते हैं।
लेकिन प्रभु जब हम अपने टीचर से अपने आचार्यों से ऐसा सुनते हैं तब हम उसे प्रभु से थोड़ी ऐसे पूछेंगे कि कहाँ इन शास्त्रों में, हम सुनते आए हैं कि प्रभु का शक्ति में चलता रहे,
कहाँ को
सुना?
तो पूछना चाहिए, हम पूछ रहे हमें नहीं पता ना, इसीलिए पूछ रहे। और कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा ये बता रहे, ऐसा नहीं कि कहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा। हम तो वही पूछे कि अगर आपको पता हो कहीं लिखा तो बताइए, तो आज से हम बोल्डली बोलना शुरू करें, कहीं नहीं, तो इसलिए नहीं बोलना चाहिए।
निकाल के एक बार प्लग इन कर लीजिए वापस,
फिर सारा बंद हो जाएगा।
नहीं ये ओपन है तो बंद नहीं होगा,
खराब नहीं हो जाएगा बिना। हाँ तो हम ये नहीं कह रहे कि कहीं लिखा हमें पता नहीं लिखा, ये कह रहे हैं इसलिए आप लोगों को कहीं पता हो कि ऐसा लिखा हुआ है तो आप बताइए।
खराब हो गई तो
क्या खराब हो गया?
जैसे आपने बोला प्रभुपाद का शक्ति विशेषता है, लोकनाथ महाराज की ऑफरिंग में मैंने पढ़ा है
श्रवण की गायन की ग्रहण की साधना वाला जो श्लोक है दैट इज एक्चुअली फॉर श्री प्रभुपाद
प्रमाण का ये हमने कह दी कि प्रभुपाद की श्रवण की गायन की साधना तो साधु के लिए प्रभुपाद को ट्रांसलेशन कर सकते हाँ वो तो ठीक है वो तो प्रभुपाद ने खुद लिखा है उसमें आप अगर उसका परपोर्ट पढ़ेंगे तो प्रभुपाद खुद कहते हैं कि हमने प्रयास किया है और उसमें हमारी गलतियां हो सकती हैं तो उससे ये काम प्रूव होता है कि प्रभुपाद शक्ति भी सरकार है वो तो साधुओं के लिए कहा गया है उसमें तो स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति चाहे भले ही भक्त हो और अगर उसके लिखने में कोई त्रुटि भी हो तो ठीक है उसको स्वीकार किया जाता है साधुओं के द्वारा तो ये तो सत्य है तो ये महाराज ने कहा तो कोई गलती नहीं तो हम लोग भी कहते हैं कि भाई प्रभुपाद ने खुद ही लिखा है महाराज प्रभुपाद ने खुद उसको तात्पर्य अगर पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि हमने भी हम्बल अटेम्प्ट किया है लिखने का और हमारे उसमें भी काफी त्रुटियां हो सकती है तो ये ठीक है कि वो श्लोक प्रभुपाद के लिए है लेकिन उस श्लोक में ये कहा गया कि वो शंकर विशारदा है उसमें तो कहा गया कि उनकी रचना में अगर त्रुटियां भी हैं तो वो दिव्य है उसको तो हम आंख बंद करके स्वीकार करते हैं कि प्रभुपाद की रचना जो दिव्य है Yes. और कोई झगड़ा करना चाहते हैं हमारा केवल इतना कहना है हम इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे कि प्रभुपाद शक्ति विशमदान है या नहीं है हमारा प्रमाण ये है कि हम जो भी कहें हमारे पास कहीं ना कहीं प्रमाण होना चाहिए अगर कोई पूछ ले बाहर तो आप क्या प्रमाण दोगे बताइए कोई प्रमाण है कहीं पर किसी शास्त्र में वर्णन है जैसे जितने भी शक्त्यावेश अवतार हैं उनकी सूची दी गई है नारद मुनि शक्त्यावेश अवतार है भारत में महाभारत इसमें भागवत में लिखा है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी ये सूची में आता है तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए तो वैसे तो कहा जाए तो कई बड़े बड़े सन्यासियों ने प्रभुपाद को कहा है तो हम ये नहीं कह रहे कि वो कोई गलती है या सही है हम ये कह रहे हैं कि इसका प्रमाण होना चाहिए और हो सकता है हमें नहीं पता ऐसा मत सोचिए कि हमको सब कुछ पता हो सकता है हमें नहीं पता हो कहीं पर प्रमाण हो कोई आचार्य दिया तो इसलिए हमने आपसे पूछा अगर आप लोगों ने कहीं पूछा है जैसे माता जी ने बताया कोई सुना दे लोगों तो लेकिन वो तो उसके लिए था वो इस चीज़ के लिए नहीं हो सकता तो ऐसा कोई प्रमाण हो तो हम बड़े हृदय से स्वीकार करेंगे इस चीज़ को और फिर आगे हर प्रवचन में कहेंगे तो कुछ चीज़ों के हम लोग बोलते हैं उसके प्रमाण नहीं होते और फिर हम उस चीज को दोहराते रहते हैं वो इस्कॉन एक स्टैंडर्ड बन जाता है क्योंकि हमने तो उनसे सुना इनसे सुना सुना है लेकिन प्रमाण कहाँ है उसका वो होना चाहिए राइट और एक बात आपको बताए जिसका प्रमाण नहीं है खैर अभी इसमें कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते आगे बढ़िए तो ये ऐसे ये भगवान के विस्तार हैं जिनका वर्णन यहाँ पर किया गया ठीक है इसी तरह जिस अर्चा विग्रह के मंदिरों में पूजा की जाती है वह भी भगवान का विस्तार स्वरूप है अर्चा विग्रह की पूजा करने के मनुष्य तुरंत उन भगवान के निकट पहुंच सकता है जो अपनी सर्वव्यापक शक्ति से भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं भगवान का एक है कि अगर आगे आकर कोई वरिष्ठ भक्त इस बात को कहें तो उनसे बड़ी नम्रता से आप पूछ लीजिए चुनौती के लिए नहीं हो सकता उनको पता हो सही तो कोई अगर कोई वरिष्ठ भक्त है आपको सबके सामने नहीं ऐसा कैसे कहा आपने महाराज प्रमाण दिया अगर से उनको बड़ी नम्रता से पूछ सकते हैं हो सकता है कि अगर वो कह रहे हैं तो उसका कोई आधार हो कोई प्रमाण हो हमें नहीं पता तो ये याद रखिएगा ऐसा नहीं इसका अर्थ है हमें नहीं पता मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा नहीं है और अगर आप लोगों को पता चले तो हम आपको अपना नंबर ले जाएंगे हमें तुरंत बताइएगा कि देखिए ये चीजें कही गई इंडिकेशन यस है जैसे हम लोग बोलते मोर से मतलब कि भक्त दो चंदा ठाकुर ने लिखा महाप्रभु ने कहा कि आएगा मेरा सेनापति भक्त तो हम लोग कहते हैं वही इंडिकेशन है कि उन्होंने ही सारे जगत का प्रचार किया तो वो भक्त है लेकिन वो एक सेनापति भक्त का जरूर है कि वो भक्त है तो वो कब मानते हैं कि वही है प्रभुपाद जिनका वर्णन महाप्रभु ने किया कि सेनापति भक्त आएगा या जिनका वर्णन अन्य आचार्य ने किए लेकिन वो इंडिकेशन बहुत स्पष्ट कि वो है ऐसे एक दृष्टि से माना जाए यस प्रभुपाद हैं, क्योंकि उनको शक्ति प्रदान हुई, बिना भगवान की शक्ति के तो कोई इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, कि उन्होंने 10-12 सालों में इतने सारे प्रभुपाद तब गए 65 77 12 सालों में उन्होंने 108 मंदिर, हजारों भक्त, ये कोई तो साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता, ये तो सच है। लेकिन जब अगर हम बाहर की दृष्टि से बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको पूछे तो आपके पास कोई आप नारद मुनि को कहिए शंकरेश अवतार है, अगर कोई पूछे तो बोले भागवत पढ़ लो उसमें लिखा होगा, चार कुमार शंकरेश अवतार है भागवत पढ़ लो उसमें लिखा होगा, तो ऐसे हमारे पास स्पष्ट होना चाहिए। यस
भगवान का अर्चन
आप लोगों की भावनाओं को हर्ट किया हमने क्षमा चाहते हैं,
भगवान का अर्चन आचार्यों के अनुरोध पर अवतरित होता है और वह उनकी शक्ति क्षमता के बल पर अपने मूल स्वरूप की तरह ही कार्य करता है। जिन मूर्ख लोगों को ईशोक का या किसी भी अन्य स्मृति मंत्रों का ज्ञान नहीं है, वे शुद्ध भक्तों द्वारा पूजित अर्चा विग्रह को भौतिक तत्वों से निर्मित मानते हैं। यह स्वरूप मूर्ख लोगों का कनिष्ठ अधिकारियों को उनकी अपूर्ण दृष्टि के कारण भौतिक देखता है, लेकिन ऐसे लोग यह नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान है तथा सर्वज्ञ होने के कारण इच्छा अनुसार जड़ को चेतना और चेतन को जड़ में बदल सकते हैं।
यस, तो भगवान जड़ को चेतन, चेतन को जड़ में बदल सकते हैं, तो इसलिए ये भी मानना चाहिए कि जो अर्चन विग्रह है इसकी हम लोग थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर चुके हैं ना, तो इसलिए इस विस्तार से नहीं जाएंगे, आगे बढ़े।
भगवदगीता 9:11-12 में भगवान अल्पज्ञ व्यक्तियों की पतितावस्था पर खेद प्रकट करते हैं, जो भगवान का इसलिए उपवास करते हैं कि वो मनुष्य की भांति इस जगत में अवतरित होते हैं। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं जानते। इस प्रकार मानसिक तत्ववादियों के लिए भगवान कभी पूर्ण रूप में प्रकट नहीं होते, वे उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति की मात्रा के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। जीवों की पतितावस्था का एकमात्र कारण ईश्वर के साथ अपने संबंधों की विस्मृति ही है।
तो हमारी पतितावस्था का एकमात्र कारण क्या है? भगवान से अपने संबंध को भूल गए, इसलिए भक्ति का मार्ग क्या है? उस संबंध को पुनः स्थापित करना, और जिसके द्वारा हमारी जो पतित अवस्था है वो ऊंचे अवलोक उठ सकते हैं।
जिन लोगों का शुद्ध भक्तों द्वारा पूजित अर्चा विग्रह को भौतिक मानते, तो क्या इसको ऐसा माना कि शुद्ध भक्तों द्वारा पूजित अर्चा विग्रह है उनमें सर सकते हैं, जो गाँव खराब देखते हैं मंदिरों में लोग अपने स्थान से भगवान को सभी कर देते हैं उनको किस स्थिति?
इसीलिए प्रभुपाद ने लिखा कि अर्चा विग्रह कैसे प्रकट होते हैं, अगर आप पढ़ें तो क्या लिखा है उसमें, एक लाइन है देखिए, अर्च विग्रह जो होते हैं वो आचार्यों की क्या पूरा लाइन पढ़िए,
भगवान का पूज्य स्वरूप जिसकी स्थापना ऐसे प्रमाणिक आचार्यों द्वारा मंदिरों में की जाती है जिनमें सातवें मंत्र के अनुसार भगवान का साक्षात्कार।
नहीं नहीं वो नहीं, यहाँ पर
भगवान का आचार्यों
हाँ आचार्यों के अनुरोध पर अवतरित होता है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है प्रभुपाद ने कि भगवान का अर्च विग्रह ये आचार्यों के अनुरोध पर होता है, अपने मन से नहीं। हमने मन से बना दिया कृष्ण की मूर्ति और उसको स्थापित कर दिया, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको अर्च विग्रह नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान शुद्ध भक्तों के द्वारा प्राप्त होते हैं, तो ये भी भगवान का रूप है, तो शुद्ध भक्त हमें दे सकते हैं भगवान। इसीलिए हमारे मंदिरों में भी हम लोग अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, जो आचार्य हैं हमारे वर्तमान आचार्य, तो हम उनकी अनुमति से लेकर उनकी अनुमति लेकर हम फिर आचार्यों के विग्रहों की स्थापना करते हैं। ऐसा नहीं इवन यहाँ पर सिंह जी आपको मंदिर बनाना है, ऐसा नहीं मंदिर बनाया विग्रह लाए बस स्थापित कर दिया हो गया, नहीं, आपको जो वर्तमान आचार्य हैं स्वामी के तो पहले उनसे अनुमति लेनी होती है। वो जब अनुमति देते हैं तब भगवान प्रकट होते हैं। जैसे भगवान पहले शुद्ध भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। जब कृष्ण आने वाले थे तो पहले वसुदेव के हृदय में आए, फिर उनके हृदय से वो देवकी के गर्भ में या देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। इसी तरह जहाँ भी अर्च विग्रह प्रकट होने वाले होते हैं पहले आचार्य के हृदय में आते हैं, और फिर जब आचार्य अनुमति देते ठीक है ये ले आओ ऐसे करो तब उनको स्थान दिए। तो इसीलिए ये आवश्यक है। अगर आप अनुमति लेकर रख रहे हैं अधिकारियों से तो फिर ठीक है उनको अच्छे विग्रह मानना चाहिए। हमारे मन में आया हम ले आए और हम पूजा कर रहे हैं, नियम है कि हमें अनुमति लेके करना चाहिए। अब आपने नहीं दिया वो आप सोचिए कि क्या है, लेकिन अगर हमारा नियम ये है कि हमें अपने घर में भी विग्रह अपने मन से नहीं आना चाहिए कि हम गए बाजार में बड़े अच्छे लगे हमने उठा लिया चलो कितने का है, ये विग्रह नहीं मूर्ति है। तो हमें अनुमति लेनी चाहिए गुरु से अधिकारियों से अर्च विग्रह सेवा शुरू करने से पहले। हाँ तो ठीक है वो पहले की बात हो गई, अगर आप उस समय से ले आए हैं या आपके परंपरा में घरों में होता है घर में चलते रह रहे हैं वो एक अलग बात है कि आप जब ले आए तब आपको पता नहीं था। तो अब आप बात कीजिए, अब आप अनुमति लीजिए, अब आप किस कौन में हैं और फिर इस लोगों से अब आप बात कीजिए कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं इतने सालों से कर रहे हैं करते रहें या ना करते रहें कैसे हों। तो ये ज़रूरी है, यही तकलीफ है भक्ति भी हम अपने मन से करने लगते हैं ना, और खास करके अर्च विग्रह। गए मार्केट में राधा कृष्ण बहुत सुंदर लगे ले आए, हमें पता भी नहीं कि राधा कृष्ण की सेवा कैसे की जाती है, कितने नियम हैं कितने अपराध होते हैं। तो इसीलिए जैसे गौर निकाय लोगों को गौर निकाय के लाने के लिए कह दिया जाता है ठीक है आप ले आइए, क्यों क्योंकि वहाँ लोग महावधन्य आए कोई नहीं देखते ठीक है गुड़िया बनाकर भी खेल सकते हैं क्योंकि इतने कृपालु हैं, लेकिन राधा कृष्ण में सेवा होगी। इसलिए ज़्यादातर जब तक भक्त बहुत सालों से इस कौन में पालन नहीं कर रहे उनको राधा कृष्ण जी की लाने के लिए घर में अनुमति नहीं दी जाती। अब कोई बिना अनुमति के ले आए और बोले महाराज अब तो क्या भाग या बस अब आइए अभिषेक कीजिए महाराज भी कर दो ठीक है भाग लेकिन नियम यह है कि अभी हमारी शुद्धता इतनी नहीं है कि भगवान हमारे भाव को देखें, ये जानना चाहिए भगवान देखते हैं भाव को, लेकिन हम जब कोई चीज़ अभी कर रहे हैं तो उस भाव से नहीं कर रहे हैं कि भगवान के प्रति हमारा अच्छा भाव है। हम लोग अपनी इच्छा के लिए करते हैं अपने आनंद के लिए करते हैं कि चलो अभी ले आए तो उपाय तो ठीक है हम उनकी सेवा करेंगे तो लोगों को भी लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं भगवान की भक्ति। तो भगवान निश्चित भाव को देखते हैं, लेकिन कब जब हमारा वो स्तर हो हमारे अंदर शुद्धता हो कि हम उस केवल उस उद्देश्य से कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि केवल भाव के जैसे कृष्ण भक्ति या विग्रह की सेवा जहाँ विग्रह की बात आती है वो भाव से नहीं होता, यानी केवल भाव से नहीं होता। विग्रह की सेवा में बहुत नियम है, जैसे हम लोग यहाँ नियम पालन करते हैं ना भाव से थोड़ी करते हैं। अभी भोग लगाना है थोड़ी रख देते भाई जब इच्छा खा लेना जब हो जाए तो बता देना तो कितना अच्छा भाव है, लेकिन हम ऐसे करते हैं मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है मुद्राए करनी पड़ती है उसको शुद्ध या नहीं होता वो अलग बात है। हर मंदिर में जो भगवान को भोग लगता है तो बनाने वाला शुद्धता से होना चाहिए, पूर्ण शुद्धता से बनता है बाहर से नहीं आता है, और फिर वो बनकर जब भगवान को जाता है तो उसको शुद्ध किया जाता है मंत्रों के द्वारा, मुद्राएँ की जाती हैं उसके ऊपर उसको फिर शुद्ध करने के लिए, फिर भगवान को आह्वान किया जाता है फिर मंत्र बोले जाते हैं उसके बाद भोग लगता है। तो कोई कह सकता है इतना सब करने की क्या जरूरत है, भाव नहीं है क्या, अच्छा रखो बोलो भगवान खा लो। वो दक्षिण भारत को थे ना चैतन्य महाप्रभु के मुकुंद के पुत्र क्या नाम था जिन्होंने लड्डू भगवान को खिलाया रघुनंदन, तो अभी हम लोग उतने शुद्ध थोड़ी है कि भगवान को बस सीधे खिला दें, इसलिए नियम के पालन की आवश्यकता। यस कुछ और पूछ इसीलिए नियम से भोग लगाई, हमने ये नहीं कहा भोग नहीं लगाई, हमने कहा नियम से लगाई, क्योंकि वो शुद्धता नहीं है कि आप सीधे भगवान को दे रहे कोई खाइया, इसीलिए नियम पालन की आवश्यकता। अगर वो शुद्धता होती तो कोई नियम पालन नहीं, जब रघुनंदन दे दिया खाओ, खाना ही है, भगवान को खाना पड़ा, वो अलग चीज है। हम ये कह रहे हैं क्योंकि इसका मतलब ये नहीं आप कह रहे हैं हमारी तो शुद्धता नहीं आएगी तो भोग ही नहीं लगाएंगे, नहीं, इसलिए नियम पालन कीजिए ताकि वो जो अर्च विग्रह के प्रति आदर है वो बना रहे। अशुद्ध अवस्था में हम केवल अगर भाव से भोग लगाने का प्रयास करते हैं तो हम अपराध कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उतनी शुद्धता नहीं, तो इसलिए नियम का पालन करते रहेंगे तो अपराध नहीं होगा और धीरे धीरे वो शुद्धता उत्पन्न होगी, दोनों चीजों इसलिए नियम पालन की आवश्यकता। तो भगवान के विग्रह सेवा भाव से तो होता है लेकिन केवल भाव से नहीं होगा, कड़क नियम का पालन। जैसे मुझे बता रहे थे किसी को कि हमारे मंदिरों में इतने नियम स्ट्रिक्ट हैं कि अगर 12:10 पर भोग लगना है तो 12:10 पर ही लगता है, 12:11 नहीं होता, ये नियम है। तो कोई कह सकता है इतना क्या जरूरत है, ये किससे कहा प्रेम आने वाला, 12:10 मतलब 12:10 पे ही लगना है, तो वो नियम है, नियम पालन करेंगे तभी हमारे अंदर शुद्धता आएगी, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। लेकिन हम बिल्कुल नियम नहीं कि हमें जब इच्छा होगी तब भोग लगाएंगे, आप बताइए कैसा प्रेम है, एक दिन आप भोग भगवान को 12 लगाते हो, एक दिन 1 लगाते हो, एक दिन 2 लगाते हो, तो हमारा भाव अच्छा है। अगर आपका भाव अच्छा है तो आपको रोज भगवान को एक ही समय पर देना चाहिए, उसको अच्छा भाव कहा गया, ऐसे ही जब हमारे मन में आया तब हमने लगा दिया, ये कैसा अच्छा भाव है। तो आप कहेंगे भगवान को तो भाव स्वीकार करना चाहिए, टाइम स्वीकार नहीं करना चाहिए, ठीक है भगवान टाइम स्वीकार नहीं करते, आप तो स्वीकार कीजिए, आप भगवान से प्रेम करते तो आप क्यों अलग अलग समय पर उनको भूखा बैठा के रखा है, एक दिन 12 खिला रहे, एक दिन 1 खिला रहे, एक दिन 1:30 खिला रहे, मतलब आपके अंदर वो प्रेम नहीं है भगवान के, इसलिए नियमों की आवश्यकता। हाँ जी, घर के लिए और मंदिर के नियम अलग है, घर में आप स्वामी हैं और मंदिर में कृष्ण स्वामी है, तो मंदिर में हम लोग कृष्ण के लिए सब करते हैं, जो नियम बताए गए तो कड़ाई से पालन करते हैं। घर में तो क्या कह सकते हैं, घर में आप विग्रह के देवी अभिषेक नहीं करते, आप हफ्ते 10 में कीजिए एकादशी, एकादशी कीजिए नियम दिया गया है, या आप दिन में 1 कम से कम उनको ठीक समय पर भोग लगा दीजिए, वो दिया गया है। तो घर में होता नहीं, घर में तो हमने देखा है, कभी कभी जाते हैं क्यों बना रहे हैं, बनाते बनाते लेकर आए रखा, पता नहीं कितनी बार भोग लगता है, जब उनकी इच्छा होती है तब भोग लग जाता है, भगवान बेचारे जैसे वो आप पर पूर्ण रूप से आश्रित है, जब मन में आए पर्दा खोल देते हैं, जब मन में आए पर्दा बंद कर देते हैं, हम किसी के घर जाते हैं तो घर के समय प्रसाद के लिए पर्दा बंद होता है, वो अचानक खोल देते हैं दर्शन के लिए, भगवान सो रहे आपको उठाया क्यों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे तो ऐसे चलता है, तो जब मन में आता पर्दा खुलता है, जब मन में आता भोग लगता है, जब मन में आता आरती होती है, कभी कभी नहीं होती है, 3 बाहर चले गए भगवान के सामने ड्राई फ्रूट रखा, भगवान के जर बैठे हैं, चपाती तो दी है, भोजन कर रहा है, खिलाओ ड्राई फ्रूट खाओ, वो भी रखा होगा जितना खाना खा लेना, सही है। हमारे एक से एक माता जी ने प्रश्न किया कि गुरु जी हम जब बाहर जाते हैं तो क्या ऐसे ड्राई फ्रूट रख के चले जाए, भगवान को कैसे करना चाहिए, लगा के चले जाते हैं। मैंने कहा आपके घर में बच्चे हैं तो मैंने आगे प्रश्न नहीं पूछा, बच्चे हैं आपके घर में, आप अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के चले जाते हो, अभी रखा है तुम्हारे सामने ड्राई फ्रूट, 3 जा रहे हैं, अभी खाते रहना है। इसीलिए अर्च विग्रह लाने के लिए अनुमति चाहिए कि आप तैयार हैं या नहीं है, केवल वो लेकर आ गए और उनकी सेवा ही अच्छे से नहीं हो रही है तो कोई लाभ नहीं, ठीक है। ये बहुत बड़ा विषय है, इसके लिए एक डीटी वर्शिप सेमिनार यहाँ पर ऑर्गेनाइज कीजिए, जिसमें घर में कैसे डीटी वर्शिप करनी चाहिए, उसके बहुत सारे नियम आते हैं, क्या ये सारे प्रश्न आते हैं, हम लोग करने जाएंगे तो हमारे विषय से डिले हो रहे हैं, तो इसीलिए प्लीज वापस आ जाइए। और इसके लिए हम आपसे यही कह रहे हैं कि किसी डीटी वर्शिप बालों को जो डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री या कोई वरिष्ठ भक्त को विशेष बुलाइए, 2-3 का वो केवल डीटी वर्शिप का सेमिनार है कि घर में कैसे डीटी वर्शिप करनी चाहिए, मंदिर में कैसे होनी चाहिए, मंदिर को छोड़ के ज्यादा घर में कैसे करें, उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर आप कर सकते हैं, क्योंकि उसका विषय ही गोल होगा। अगर अभी हम लोग शुरू करेंगे एक के बाद एक टिक लेना, जब हम कहीं जाते हैं तो क्या करें, और फिर कभी घर में मृत्यु हो जाती है तो क्या करें, जन्म होता है तो क्या, ये सारे प्रश्न वो रीति वशिष्ठ सेमिनार में हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए।
इस मंत्र में तथा अन्य अन्य अनेक वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अनादि काल से जीवों को सारी वस्तुएं प्रदान करते रहे हैं। जीव जो वस्तु चाहता है भगवान जीव की योग्यता के अनुपात से उसे प्रदान करते हैं। यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे न केवल आवश्यक योग्यताएं अर्जित करनी होगी अपितु उसे उस अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करनी होगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदवी प्रदान कर सकता है। पद प्राप्ति के लिए मात्र योग्यता ही पर्याप्त नहीं होगी, यह पद किसी श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार भोग प्रदान करते हैं, किंतु मात्र योग्यताओं के ही पुरस्कार पाने के लिए पर्याप्त नहीं होती, भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होती है।
यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है, आप योग्य हैं सच चीज पाने के लिए, फिर भी आपको नहीं मिलता जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। कितना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद ने दिया कि कोई व्यक्ति हाईकोर्ट जज बनने का योग्य हो गया, क्वालिफिकेशन सब है, लेकिन ऐसे जिस दिन वो योग्य हो जाता बन जाता, जैसे समझ लीजिए हाईकोर्ट जज बनने की एक योग्यता है कि उसको 10 साल तक हाईकोर्ट में लॉयर के रूप में काम करना चाहिए, तो जिस दिन उसका 10 साल पूरा हो गया अगले दिन जाकर जज की कुर्सी पर बैठ जाता है, बस अब 10 साल पूरा हो गया मेरी योग्यता हो गई। नहीं, योग्य होगा, 100 लोग योग्य होंगे, उनमें से 2 लोगों को अधिकारी अपॉइंट करते हैं, ठीक है, आपके ऊपर आप कर सकते हैं, जज कर सकते हो। इसी तरह केवल योग्यता होना ये प्रमाण नहीं है कि हमें इस जगत में कुछ मिलना चाहिए, योग्यता के साथ साथ कृपा चाहिए। नहीं कर सकता, भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप अपना भोजन भी हजम नहीं कर सकते भगवान की कृपा के बिना। अहम वैश्वान भूतवा, भगवान ये जो अग्नि है ये कौन है, भगवान है। तो देखिए भगवान कहाँ कहाँ करते हैं, आप तो भोजन तक हजम नहीं कर सकते तो फिर किस चीज का हमें अहंकार है। आप लोगों को छोटी छोटी चीजों पर अहंकार हो जाता है जी। कृपा शब्द का अर्थ क्या है, कृपा किसे कहते हैं, कृपा किसे कहते हैं, आप कह रहे किसी को देते किसी को नहीं देते, कृपा कहते किसको, कृपा उसे कहते हैं, 2 चीजें, एक न्याय और दूसरी कृपा। न्याय कब किया जाता है, योग्यता के आधार पर जो दिया जाए वो न्याय कहलाता है, और जो बिना योग्यता के दिया जाए वो कृपा कहलाता है। तो अब आप कहें कि इसको भी देनी चाहिए इसको भी देनी चाहिए, मतलब क्या, कृपा के लिए कोई पात्र नहीं है। कृपा का अर्थ ही है कि भगवान जिसको चाहे दे सकते हैं, उसको आप बाध्य नहीं कर सकते कि भगवान को इनको भी देनी चाहिए। जैसे हम लोग महाराज इनके ऊपर कृपा की, महाराज इनके ऊपर कृपा की, अरे महाराज को जानते तो जिनके ऊपर कृपा करना है, आप नहीं कह सकते कि इसके ऊपर कृपा कीजिए इसके ऊपर कृपा, आप अपने लिए कह सकते भगवान महाराज बड़ी कृपा कीजिए, लेकिन आप हम लोग कई बार महाराज ये है थोड़ी सी कृपा इनके ऊपर कीजिए, महाराज थोड़ी सी कृपा इनके ऊपर, मतलब आप महाराज को आदेश दे रहे हो कि महाराज अब कृपा करना है। कृपा मतलब वो जिन पर चाहे करेंगे उनके ऊपर छोड़ दीजिए, कम से कम एक चीज से उनके ऊपर छोड़ दीजिए। तो इसी तरह कृपा का अर्थ है, कृपा और न्याय में अंतर है। तो ये जब योग्यता आ गई, योग्यता के आधार पर जो मिलता है वो न्याय कहलाता है, कि आप क्वालिफाइड है आपको ये मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा मतलब अन्याय हो रहा है। लेकिन कृपा शब्द क्या है, आप योग्य नहीं है लेकिन आपको दे दिया जाता है उसको कृपा कहते हैं। तो भगवान की वो अधिकार है कि वो किसको दे किसको ना दे। जैसे मान लीजिए कि एक शिक्षक होता है तो शिक्षक के पास कुछ प्रश्न पत्र आते हैं, उसमें 8 लोग फेल हो गए, किसी को 5 मार्क कम है किसी के 3 मार्क कम है, तो वो शिक्षक के ऊपर है, वो कृपा करता है पांच मार्क एक्स्ट्रा देकर पास कर लो, वो कृपा। जैसे भारत में कानून है, किसी ने हत्या कर दी तो हत्या के आधार पर उसको दंड दिया जाता है, मृत्यु दंड सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, लेकिन वो एक कृपा की याचना करता है भारत के राष्ट्रपति से, मर्सी पिटीशन, और उसको साइन करता है, ठीक है, तो वो छूट गया। हालांकि उसने इतना किया, तो अगर योग्यता के आधार पर देखा जाए तो उसको तो फांसी होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कृपा हो गई इसीलिए फांसी नहीं, तो इसको कहते हैं कृपा। और राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति के पास 10 एप्लीकेशन जाए, उसमें से वो 4 को रिजेक्ट कर दे और 6 को हाँ कर दे, किसी के पास अधिकार नहीं है भारत में उसको पूछने का कि आपने अधिकार, आपने 4 को रिजेक्ट क्यों किया और 6 को क्यों एक्सेप्ट किया, वो उसका अधिकार है। वो जिसको चाहे दे सकते हैं, जिसको चाहे मना कर सकते हैं, उनको कोई नहीं पूछ सकता। तो जब भारत के राष्ट्रपति को कोई नहीं पूछ सकता, तो कृष्ण को हम कैसे पूछ सकते हैं कि आपने इनके ऊपर कृपा क्यों नहीं की। दया को कैसे समझना चाहिए? दया ऐसा है कि दया, सही दया क्या है? जब हम कहते हैं कि दया करना, जीवों के ऊपर दया करना चाहिए, तो जिस अवस्था में वो है उनसे बाहर निकालने के लिए उनको प्रयास करना चाहिए, और वो भी कृपा के द्वारा होता, करुणा के द्वारा होता। उसमें करुणा जब हृदय में है तब व्यक्ति किसी के ऊपर दया कर सकता है कि ठीक है चलो आपको हम ये कर लेते हैं। तो दया कभी कभी जरूरी नहीं है कि, वैसे दया भी एक दृष्टि से देखा जाए तो कृपा ही है, व्यक्ति दया कर रहा है उसके ऊपर योग्य नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति है वो कष्ट में पड़ा है और यहाँ पर जैसे प्रभुपाद है, उनके मनुष्य हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअली इनका ये अधिकार है लेकिन इनको नहीं, ये कर नहीं रहे, चलो मैं उनको सही मार्ग दिखला देता हूँ। तो किसी के अधिकार को प्राप्त करने के लिए आप अगर सही मार्ग दिखा रहे हो, दया है उसके ऊपर, आपका अधिकार है कृष्ण की प्राप्ति, या आपका कुछ चीजों का अधिकार है लेकिन आपको मार्ग नहीं पता, तो किसी ने आकर आपको बता दिया, ये दया भी कहला सकती या कृपा भी कह सकती। तो ज्यादा कोई भेद दया और कृपा में है नहीं, किसी के ऊपर दया करना कृपा करना ज्यादातर एक शब्द को सेम माना जाता है। ऐसा नहीं है कोई नहीं भी करे तो भी भगवान कृपा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई अगर करेगा तो ही भगवान कृपा करेंगे। देखिए राष्ट्रपति के पास कोई अगर एप्लीकेशन लेके जाएगा तभी वो कृपा करेंगे ना। तो अगर कोई भगवान के पास जा रहा है, योग्यता नहीं भी है, तो ये जो धर्म प्रबंधन के साधारण नियम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान को बाध्य किया जाएगा कि भाई उसकी योग्यता नहीं, आप कृपा नहीं कर सकते, उसने आपके प्रति इतना भक्ति नहीं किया, आप कृपा नहीं कर सकते। भगवान ऐसे व्यक्ति पर कृपा कर सकते हैं जिसने कुछ नहीं किया, भगवान के आया ही नहीं भगवान के पास, उसके ऊपर भी कृपा कर सकते हैं। तो भगवान को कोई बाध्य रोक टोक नहीं है। ये यथावा प्रबद्यन्ते, भगवान ने इस तरह कहा कि आप हमें बताएंगे कि हमें कृपा चाहिए तभी तो मैं आपके ऊपर कृपा करूंगा, एक साधारण नियम है। जैसे भारत में एक साधारण नियम है कि अगर कोई मर्सी पिटीशन करता है तो होगा, लेकिन राष्ट्रपति भी किसी को चुन सकता है कि बोले ठीक है इसको मैं विशेष देना चाहता हूँ, उसने कोई मर्सी पिटीशन नहीं की तो भी राष्ट्रपति कर सकता है, अगर वो कह दे कि नहीं इसको पूर्ण, तो कोई नहीं कहेगा। ये तब होगा जब हम भगवान की स्थिति को नहीं समझते, ये भगवान को हम अपने नियमों में ले रहे हैं कि तुम हमारे साथ ये नहीं करना, पार्शियलिटी नहीं करना। जैसे एक व्यक्ति है अभी यहाँ के अधिकारी हैं, उन्होंने 2 गुलाब जामुन किसी को एक्स्ट्रा दिए, आपको नहीं मिले, आप भी दुख हो जाते हैं। मैं 15 दिन से मंगल आरती आ रहा हूँ, गुलाब जामुन उसको एक्स्ट्रा मिल गए, लेकिन क्यों हम भगवान की स्थिति नहीं समझे? समर्पण उसी को कहते हैं कि भगवान कौन है हमें ये जानना है, वो सर्वशक्तिमान है। तो जब सर्वशक्तिमान कह रहे हैं तो उनकी शक्ति को क्यों कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं? तो ये हमारे अज्ञान से जनित होता है कि हमें दुख हो जाएगा अगर ये भगवान ने उनको दे दिया हमें नहीं दिया, उल्टा भक्त खुश होगा। आप ये सोचिए जो सही भक्त है अगर उसके ऊपर कृपा नहीं हुई लेकिन दूसरे के ऊपर हो गई, सच्चा भक्त बहुत प्रसन्न होगा, कभी दुखी नहीं होगा। क्यों? वो ये सोचेगा मैं योग्य नहीं हूँ, वो योग्य है कृपा के, भगवान ने उसको योग्यता दी, तो उसको तो प्रसन्न होना चाहिए, दुखी क्यों होना चाहिए? ये भौतिक चेतना है। आध्यात्मिक चेतना जब हम दूसरों को देखते हैं कृपा होते, भले वो पात्र नहीं है, उल्टा वो बहुत प्रसन्न होता है। प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं, प्रहलाद महाराज ने कहा मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, बताइए कहा कि नहीं, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है क्योंकि मैं तो आपके श्रवण कीर्तन में लगा हूं, मेरा तो उद्धार होना ही होना है, लेकिन मुझे मूर्खों की चिंता है जो नहीं कर रहे, आप उनके ऊपर कृपा कीजिए। तो ये भक्त का भाव है, भक्त का भाव ये नहीं कि उसके ऊपर कैसे कृपा हो गई चलो आप झंडे खड़े कर दो। हमें लगता है ईश्वर जिसे पूरा होगा नहीं यार इसके लिए उनके इतिहास की आवश्यकता है कि कौन है शिशुपाल, जय और विजय, और जय और विजय भगवान के नित्य पार्षद है, उनके धाम के उनके द्वारपाल है, और क्योंकि चार कुमारों का श्राप के कारण उनको ये जन्म लेने पड़े तो उनको वापस जाना निश्चित था इन जन्मों के बाद, तो चाहे वो कैसे भी मरते हैं उनको जाना ही था। तो ये चीज़ दिखाने के लिए कि मेरे भक्तों को मैंने वापस उनके अपने धाम में दे जा रहा हूँ, जैसे तीन जन्म हुए उनके, कौन कौन से भगवान के द्वारपाल हैं, उनको तीन जन्म के, उसके बाद उन्हें वापस जा, तो इसीलिए कोई चला गया। लेकिन इसका और एक कारण नारद मुनि ने दिया, बहुत अच्छा कारण दिया नारद मुनि, कहते हैं गोप्य काम भयात कंसो द्वेषाच्छेदादयो नृपः, कि वो कहते हैं कि गोपियों ने भगवान को काम से प्राप्त कर लिया, काम यानी प्रेम, शुद्ध प्रेम, तो गोपिया कामत भयात कंसो, कंस ने भय से कर लिया, उसे इतना भयभीत रहता था कि 24 घंटे कृष्ण भावना भावित था वो, हम लोग भी इतने नहीं रहे थे, 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोचता था, शक्ल देखता था अपने चेहरे में, उसको गला कटा हुआ दिखाई देता था, चिल्लाता था कृष्ण आ गए कृष्ण आ गए, उसके दो सैनिक आ रहे हैं उसको देखकर चिल्लाता था कृष्ण बलराम आ गए कृष्ण, मतलब कितना कृष्ण भावना भावित था हर एक को देखकर कृष्ण को, तो कंस ने भय से और शिशुपाल आदि लोगों ने द्वेष से, शिशुपाल बचपन में तुतलाकर बोलता था तब से कृष्ण की निंदा करता था, कि विष्णु ने प्रश्न किया कि हमने तो सुना इसको बोलना नहीं आता था, तब से निंदा करता था, ये कैसे शुद्ध, यही चीज जब उसने देखी युधिष्ठिर ने सबके सामने, तो युधिष्ठिर ने यही प्रश्न किया कि ये तो इतनी निंदा हमने सुना अभी भी बचपन से कर रहा था, तो ये कैसे मुक्त हो गया, ये आश्चर्य की बात है, भक्ति कौन करेगा कि अगर ऐसे लोग मुक्त हो रहे हैं। तो नारद मुनि ने बताया कि इतना द्वेष करता था कि जब बोल भी नहीं पाता था, मतलब बच्चे काफी बोलते थे, उस समय से कृष्ण की निंदा, मैं फिर तो को छोड़ूंगा नहीं ऐसे बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ समय नहीं बोला बोला नहीं जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति क्योंकि इतना द्वेष, तो नारद मुनि कहते कि अगर इतना द्वेष तुम भगवान से उत्पन्न कर लो कि केवल भगवान का 24 घंटे स्मरण हो, तो क्योंकि भगवान इस श्लोक में बहुत सुंदर है, बहुत शुद्ध है, अपाप शुद्धम, भगवान बहुत शुद्ध है, तो जो भी उनके संपर्क में आकर वो शुद्ध हो जाएगा, तो चाहे आप द्वेष से संपर्क में आओ, क्रोध से आओ, भय से आओ, कैसे भी आओ, अगर कृष्ण के संपर्क में आ रहे हैं, जैसे अग्नि है, अग्नि में आप हाथ डालिए, जाने में डालिए, अनजाने में डालिए, गलती से डाल दीजिए, बिना देखे डाल दीजिए, अग्नि जला देगी, बच्चा डाल दे बड़ा डाल दे, ऐसा नहीं कि बच्चे का हाथ जाएगा अग्नि के, छोटा गलती से डाल दे इसको पता नहीं जल जाएगा, बच्चा जल जाए, तो इसी तरह कृष्ण शुद्ध है, उनके संपर्क में किसी भी तरह से आएंगे शुद्ध होना होता है, और इसीलिए शिशुपाल शुद्ध हुआ, ठीक है। अभी कोई हाथ नहीं उठ रहा, धन्यवाद। जीव है नहीं जानता कि भगवान
से क्या मांग है, मांगा जाए या उनसे किस पद के लिए याचना की जाए, किंतु जब जीव को अपनी वैधानिक स्थिति का पता चल जाता है तो वह याचना करता है कि उससे भगवान अपने दिव्य संगति के लिए शिकार है, जिससे
हमें एक ही प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हमें अपनी सेवा में लगा है, बस संग में रखे, सेवा में लगा है, ज्यादा कोई चीज नहीं चाहिए। तो चाहिए और कुछ आप लोगों को? क्या इच्छा है आप लोगों की भक्ति करते हुए? अब बदल गई ना, और वैसे भी सबके सामने बोलना है तो बदल ही जाएगी। भगवान के साथ अकेले में है तो हमें पता है क्या इच्छा है। हम कहेंगे नहीं भगवान आपकी सेवा चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए, थोड़ा सा धन भी दिलवा देना ताकि अच्छे से आपकी भक्ति कर सकूं। कितना टेंशन हो रहा है, बच्ची की शादी नहीं हो रही, भगवान क्या आप कर रहे हो, बाकी आपकी सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हमारी इच्छाएं क्या होनी चाहिए? जितना और संभाल कर मांगिए, जब करते समय जो आप भगवान से मांगोगे मिल जाएगा, इसका बड़ा संभाल कर रखिए, गलत चीज मत मांग लीजिए। दरअसल हम लोगों को डरना चाहिए अपनी इच्छाओं से, भगवान के सामने जाकर कहीं कुछ कहना दे और भगवान हाँ ना बोल दे, है ना। तो इसीलिए एक काम किया कीजिए, आप लोग एक सॉल्यूशन देते हैं इसका। इच्छाएं है ना, आई जाती है ना भगवान के सामने जाकर। आप में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, भगवान के सामने जाकर मांगता ही नहीं कुछ भौतिक, केवल अध्यात्म, केवल सेवा। वो तो भगवान कष्ट दो, नरक में रखो, कोई चिंता नहीं है, बस आपकी सेवा में लगा मांगते, मांगना चाहिए ना। लेकिन यही तो बताया जा रहा है, तो फिर कैसे इससे बाहर आए? बड़ा सरल सॉल्यूशन है, आप भगवान के सामने आइए, जो इच्छा है सारा मांग लीजिए। आपकी इच्छा धन चाहिए, सुंदरता चाहिए, धन देगी, रूपम देगी, मान प्रतिष्ठा चाहिए, सब मांगिए, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल डरिए नहीं, सब मांग लीजिए। आखिर में एक प्रार्थना आपसे कीजिए, भगवान मेरी बात सुनना है। सरल सब मांग लीजिए, बस भगवान सुनता नहीं करीब आए, भगवान सोचेंगे टाइम सही बात। लेकिन क्या करें, और कहीं कर भी नहीं सकते ना, तो कम से कम ये प्रार्थना तो एंड में हमें कर लेनी चाहिए। भगवान सुन,
भगवान कहते हैं ना कि ये मूर्ख है, मैं कि मैं समझदार हूँ।
लेकिन फिर भी हमारे लिए अच्छा है कि हम मांगना बंद करें। इसका अर्थ ये नहीं कि हम मांगते रहे, भगवान दे या ना दे उनकी इच्छा, हम तो मांगते रहेंगे, नहीं बंद करना चाहिए। तो हर प्रार्थना के अंत में इस प्रार्थना को जरूर दोहराइए, ठीक है? क्या दोहराएंगे? सुनना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? तब उसके बाद, उसके पहले आप जो मांगना है मांगिए, कोई चिंता नहीं, हृदय से मांगिए, पूरा हृदय खोलकर मांगिए भगवान से। लेकिन अंत में ये कह रहे भगवान सुनना नहीं। यही अर्जुन ने जब समर्पण किया भगवान से, भगवत गीता में उसने यही कहा, कार्पण्य दोषो स्वभाव परीक्षा में तुम धर्म समूढ़ चेता यद श्रेय स्यान निश्चित ब्रूहि तक में शिष्य। तो आप मुझे बताइए कि मेरे लिए मैंने जो कहा उसे भूल जाइए। भगवान को यही कहा ना, इतना सब कह दिया अर्जुन ने पहले अध्याय में, लंबी चौड़ी है, भगवान सुन रहे था, बोलते वो कितना बड़ा बड़ा बात कर रहा था कि अरे परिवार का क्या होगा, पाप लगेगा, ये होगा, वो होगा, गुरु को मार कर जो खून से सनी हुई भूमि, थोड़ी देर बात करने वाला है, कृष्ण को भी पता था इसलिए कृष्ण हंस रहे थे, बोलते रहे। तो बड़ा बड़ा बोल दिया, अंत में क्या कहा, कंफ्यूज हो गया उन्हें। इसीलिए आप जो भी मैंने कहा वो भूल जाइए, आप जो अच्छा हो मुझे बताइए, शुभ प्रार्थना में करना चाहिए,
ठीक
है? श्लोक तो याद आता नहीं उस समय पे, जब सभी को दुख हो। भगवान से हमारा निकटता कब होती है? जब जीवन में दुख आता है ना, सही में भगवान के सामने आकर इतने प्रेम से बात करते हैं भगवान से, जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आ जाए, भगवान बस इस बार बचा, इस बार, उस टाइम तो बड़ा जल्दी संबंध स्थापित हो जाता है, सुख में रहते हैं, आए निकल गए, क्या हो प्रभु जी आप जा रहे, थोड़ा प्रसाद, टाइम नहीं है प्रभु, टाइम बिल्कुल नहीं। लेकिन जब दुख होता है तो प्रसाद भी लेगा आदमी, मंदिर में बैठेगा, उसको बोलो जब करो, जब भी करेगा कीर्तन करो, जो बोलो वो करेगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे। थैंक यू, आगे बढ़िए, इसको खत्म करना है।
जिससे वो उनकी दिव्य प्रेम में सेवा कर सके।
हमें लगता है आपको कम से कम डेढ़ महीने के लिए आना चाहिए ऋषि उपनिषद पढ़ाने, जहाँ 10-12 दिन में पढ़ा कर लाया। अभी तो हम बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन एक ही चीज पर इतने सारे प्रश्न हो सकते हैं। ये प्रश्न हम इसलिए पूछते हैं, ये जो तरीका हमारा है, ताकि हमारी चीजें स्पष्ट हो। केवल लेक्चर बताते जाने से फिर वो अगर सब ये पढ़ते जाएं, हम बस कोई चीज समझाते जाएं, थोड़े समय में पीछे से लोग कम होते जाएंगे, 4 लोग कम 6 लोग कम, रुचि नहीं। इस तरह से हमें ये पता चलता है कि कई चीजें जो हमारे मन में आती नहीं है, लेकिन ये प्रश्न पूछे जाते तो हाँ ये कैसे होगा, ये सही बात है, तब फिर आगे पूछना
चाहिए।
आपको ऐसा है कि हमारे पास 31 तारीख के बाद कोई समय नहीं, 31 तारीख लास्ट हम खींच सकते हैं कि बस तब तक जितना हो जाए, तो प्रयास करेंगे 31 तारीख तक कंप्लीट करें। शाम को हमारा अच्छा नाम होती क्लास पीछे चल कर के 4 तंत्र हुए हैं, अभी कल 4 पूरे हो गए, वो भी हम जल्दी करा रहे हैं, हो जाए
उनको।
उनके 4 दिन क्लास नहीं हुई थी, उनकी 4 दिन क्लास नहीं थी, इसीलिए जहाँ आपकी हो रही थी 16 तारीख से वहाँ नहीं हो रही, इसके धीरे
चलिए
एग्जाम तो होगा ही होगा, उससे चिंता मत करें। और हम ये सोच रहे कि 31 तारीख के पहले 18 मंत्र कंप्लीट भी करा देंगे, कल से ऐसी स्पीड में कराएंगे कि आपको भी हैरान हो जाओगे, ये हुआ क्या 3 दिन में। वैसे भी देखिए 9वें मंत्र से जो होगा, अगर आप लोग ध्यान से देखिए 9 से 11 जो मंत्र है वही मंत्र 12 से 14 है, 2 शब्दों का अंतर है केवल, इसमें विद्या विद्या है, उसमें संभूति व संभूति, मंत्र वही है। देखने जाते हैं 9 मंत्र कौन सा है, हमें कोई तकलीफ नहीं, अगर कल आप लोग एक्स्ट्रा लेना चाहें तो हम खुश हैं, अगर आप लोग कहें तो कल लंबा ले सकते, वह ठीक है डिसाइड कर लेंगे, अभी इसके बाद इसको कंप्लीट
कीजिए।
कृपया भी मांगना बंद कीजिए, बहुत मांग लिया भगवान से, तो भगवान के सामने आए तो क्या कहना चाहिए, देखिए हमने बोलना शुरू कर दिया, हमें खुश लगा आप लोगों को, हमें भी रोकना चाहिए, बोलना शुरू करें तो आपको घाट पर बोलिए बंद कर लगे, तो भगवान के सामने आए तो क्या करना चाहिए अगर मांगे नहीं तो धन्यवाद देना चाहिए, भगवान के सामने आकर उनको धन्यवाद देना चाहिए जो हमें मिला है उसके लिए, बस इसलिए भगवान के सामने आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए, मांगना बंद कर दीजिए, मांग लिए कितना समय मांगते रहेंगे, अभी धन्यवाद देना चाहिए। हमारे जीवन में इतनी सारी चीजें हैं जिनके लिए हम धन्यवाद दे सकते हैं, देते नहीं, आप में से कितने लोग भगवान को धन्यवाद देते हैं कि मेरी दस उंगलियां हैं? देते कभी? कभी नहीं दिया। लेकिन ये कितनी महत्वपूर्ण है। कितने लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, उनको पूछिए जिनकी उंगलियां नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है। हमने कभी धन्यवाद दिया भगवान को कि मेरी दो आंखें आपने बनाई रखी, मैं देख पा रहा हूँ, भले चश्मा लगा पर भी देख पा रहा हूँ अच्छे का। कि कितने लोग हैं जो जन्म से अंधे पैदा हो गए, हमने धन्यवाद दिया भगवान? बिल्कुल, क्योंकि हम सोचते साधारण है। एक बार एक स्कूल में बच्चों को एक एक्सरसाइज दी गई, दुनिया के सात अजूबे लिखो। तो मैं बच्चों को लिखना सब शुरू किया, ताजमहल ये वो सब चालू हो गए। एक बच्ची, उसने कुछ नहीं लिखा, ऐसे बैठी सोच रही, बहुत देर हो गई, सबने पेपर दे दिया, उसने कुछ नहीं लिखा। तो उसके टीचर ने मुझे, तुमने एक भी अजूबा नहीं लिखा, दुनिया के सात अजूबे एक भी नहीं लिखा तुमने? तो बोले, नहीं मैडम, मैं ये सोच रही हूँ कि आपने केवल सात ही कहे। उसने कहा, मतलब सात ही है? नहीं, मैं तो ये सोच रही आपने सात ही कहे, इसलिए मैं लिख नहीं पा रही। क्यों? उसने कहा, दुनिया में कितने अजूबे हैं, हम देख पा रहे हैं, ये अजीब बात है कि नहीं? ये अजूबा है, अंदर है, जिसको हम बोल पा रहे हैं। देखिए, हमारे शरीर है, बोलते रहते हैं, हम कभी नहीं सोचते कि बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, चल पा रहे हैं। एक बार एक डॉक्टर थे हमारे मित्र, तो उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया, दो महीना बेड रेस्ट। तो बताते हैं कि उस दिन मुझे पता चला कि चलने का कितना वैल्यू है। उस दिन मैं अपनी बालकनी में बैठा रहता हूँ, चल नहीं सकता, मना किया हुआ है, और नीचे लोगों को चलते हुए भागते हुए देखता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि कितनी वैल्यू है चलने की। हम तो उसको साधारण ले लेते हैं। ये सारे अजूबे हैं। हमारा शरीर, हम कुछ खाते हैं, वो अंदर से सारा परिवर्तित, जो खून चाहिए खून, खान जो भी चाहिए शरीर के लिए, सारा बन के जो गंदगी है सब निकल के, कितनी बड़ी व्यवस्था है। और ये शरीर ही कितनी बड़ी, ऐसी कौन सी मशीन है इस दुनिया में जो अपने आप दूसरी मशीन प्रोड्यूस कर देती है उसके जैसे? मशीन है, यंत्र है। तो हम लोग इन चीजों को नहीं देखते, इसीलिए धन्यवाद देना शुरू कीजिए, मांगना।
जो लोग शक्ति के सही से सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं, तो जीवन के असली उद्देश्य वो भूल जाते हैं।
जो आपको स्टोरी याद है ना रियल ब्यूटी की, प्रभुपाद ने समझाई, किसको नहीं पता, कोई है ना जिनको नहीं पता रियल ब्यूटी? अश्री शाम कहे सबको पता नहीं पता, अब नहीं पता, लेकिन सुनाएंगे तो बाकी लोग कहेंगे कि बात बड़ा कोई चीज नहीं सुन, संक्षेप नहीं सुन, अभी सब लोग नहीं सुना, फिर से सुनाएंगे। कहानी सुनना अच्छा लगता है, समय कम है, लेकिन शॉर्ट में बता देते हैं। प्रभुपाद इस कथा को सुनाया करते थे कि इस जगत का सौंदर्य कैसा है, यहाँ लिखा जा रहा है ना कि हम लोग असली चीज को भूलकर टेम्परेरी ब्यूटीज, मतलब जो शाश्वत सौंदर्य नहीं है, अशाश्वत सौंदर्य के प्रति हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद इसको कथा को सुनाया करते थे कि एक बार कोई बहुत बड़ा व्यक्ति था, बड़ा अमीर, तो एक कदम जा रहा था, तो उसने देखा एक बहुत सुंदर लड़की, तो उसको बड़ा अच्छा लगा और उसके पास गया और उसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की जो थी थोड़ी शायद डिस्काउंट की होती थी, तो भक्त थी, तो उसने कहा, ठीक है, आप अगर मुझसे शादी करना, बहुत सुंदर थी, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो 7 दिन बाद आइए। तो चला गया बड़ा खुश कि 7 दिन बाद शादी होगी। 7 दिन बाद जब वापस आया तो उस 7 दिनों में लड़की ने कुछ दवाइयाँ ली जिनसे उसको सतत कंटिन्यूस लूज मोशंस हो गए और वॉमिटिंग कर रही है। तो उसने दोनों एक बड़े बड़े मटकों में संभाल कर रखे, लेके नहीं, जो जो लूज मोशन होते थे मटके में संभाल के रखा, और जो वॉमिटिंग करती थी वो दूसरे मटके में। वैसे 7 दिन तक वो कंटिन्यूस करती रही। तो 7 दिन बाद संभाली के, मैं एक दो दिन अगर ऐसा हो जाए तो हमारी आंखें अंदर चली जाती हैं, तो 7 दिन तक केवल वही निकल गया। तो उसका जो मतलब चेहरा था एकदम ऐसा हो गया, आंखें अंदर चली गई, काला पड़ गया, ये सब ऐसा कमजोर। अब 7 दिन बाद हमारे हीरो जी आए, मतलब उसको शादी करने के लिए, तो ये बैठी थी बाहर, उसने देखा, बोला जाओ मालकिन को बुला कर लेकर आओ। कहा कौन? अरे इसमें जो रहते नहीं रहते तुम, नहीं 7 दिन पहले जो दिखा, उसने कहा मुझे ही देखा। तब उसने ध्यान से देखा कि अरे ये तो वही है, क्या हो गया तुम्हें? उसने कहा कि जिस चीज से आप आकर्षित हुए थे वो मैंने 2 घंटों में बंद करके रख दिया, क्योंकि कुछ चीज मेरे अंदर थी तो मैं सुंदर लग रही थी, अब वो चीज मेरे शरीर से बाहर निकल गई, सुंदरता चली गई, तो सुंदरता किसमें है? मुझमें नहीं है, वो 2 चीजों में है, तो वो मैंने आपके लिए रखी, आप शादी करना तो उससे कर लीजिए। सुंदरता से प्रभावित हुई, अब आगे बताने की जरूरत नहीं है कि जब उसने मटके खोले तो क्या हुआ होगा। तो इसको प्रभुपाल समझाया गया, तो इसीलिए हमें ये सुंदरता से प्रभावित नहीं होना चाहिए इस जगह। आगे बढ़िए,
इसे बोलकर मनुष्य अनेक योजना वाला कार्यक्रम वाला संतुलन लाना चाहता है, लेकिन यह तो चपा योग को फिर से जमाने की बात है। फिर भी भगवान इतने कृपा हुए कि वे भूलक कर उनको बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने दे रहे। अतः ईशो उपनिषद का यह मंत्र अत्यंत उचित शब्द यथार्थ अत्यर्थ का उपयोग करता है, इससे यह सूचित होता है कि भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार पुरस्कृत करते हैं।
भगवान सॉरी भगवान ये क्यों करते हैं? जो जीव गलत कर रहा है उसको करने देते हैं, यहाँ लिखा है ना कि भगवान कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। हाँ, इच्छा करने की स्वतंत्रता लेना नहीं चाहते, बहुत अच्छा। और वो चाहते हैं कि वो कष्ट पाए, क्योंकि कष्ट के बाद वो सोल्यूशन ढूंढने के लिए आएगा, क्यों मेरे जीवन में कष्ट है, तब फिर मैं किसी भक्त को भेजूंगा, सूरत के किसी भक्त को बोलूंगा जाओ उसको बताओ, तो फिर वो कोई जाकर बताएंगे और फिर वो मेरी भक्ति में आएगा। इसलिए भगवान कष्ट करते, कष्ट हमारे लिए भगवान के धाम जाने का मार्ग है। कष्ट नहीं होते इस जगत में, हम लोग क्या कहते हैं, क्या जरूरत है जाने की, राइट? सब ठीक है, इधर ही है, यही कहेंगे तो भगवान की भक्ति नहीं हो पाता। ठीक है, आगे बढ़िए।
यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है तो भगवान बिना रोक टोक के उसे ऐसा करने दे देगा, और यदि वह घर वापस जाना चाहता है अर्थात भगवत धाम वापस जाना चाहता है तो उसकी सहायता करते हैं।
तो यह महत्वपूर्ण बात है कि हमारी इच्छा बड़ी महत्वपूर्ण है। हम अगर हमने इच्छा की, इसीलिए यहाँ इस नरक में है, अगर इच्छा कीजिए कि हम भगवान के धाम वापस जाओ, और कैसी इच्छा होनी चाहिए? एक बार एक गुरु नदी में स्नान कर रहे थे, शिष्य ने आके प्रश्न किया, महाराज भगवान की प्राप्ति कब होगी? उन्होंने उसका सर पकड़ा, पानी में अंदर डाल दिया, बाहर निकाला, फिर डाला बाहर निकाला, 3-4 बार कर लिए। शिष्य ने पूछा, महाराज क्या गलती होगी? मैंने तो इतना ही पूछा था कि भगवान की प्राप्ति कब होगी। दोनों ने पूछा, जब तुम अंदर थे क्या सोच रहे थे? क्या तुम ये सोच रहे थे कि खाने को बड़ा मिल जाए, पीने को मिल जाए, स्त्री मिल जाए? क्या केवल हवा। जिस दिन ऐसी तीव्र इच्छा कृष्ण की प्राप्ति की होगी उस दिन कृष्ण आ गए। तो यहाँ ये लिखा गया कि सब कुछ हमारी इच्छा पर है। समय काफी हुआ, ये पूरा तो शायद आज नहीं पढ़ पाएंगे, कि एक आँख बंद करके पूरा पढ़ लें, मतलब आँख बंद करके पढ़ेंगे कैसे, मतलब कान बंद गए कान भी बंद कर, हाँ आँख और कान बंद कर लें आप लोग पूरा पढ़ लें, ठीक है? क्या है सारा इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ ऐसा है जो इम्पोर्टेंट नहीं,
मतलब ये आपको समझाना भी पड़ेगा।
ठीक है, कल इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वांछित प्रभु भी ऐसे प्रकार से तुझे विचित्र का नाम पाल दिया है, वैसे अंतिम विवेचन बन गए कि प्रभु की दाय तो के मानने दी। आप कुछ पूछ रहे थे, प्रश्न पूछ सकते, जिनको जाना हो देख रहा हूँ जा सकते।